पहला कुरिन्थियों अध्याय 11। जिस तरह से यीशु मसीह मेरे लिए एक उदाहरण है, मेरा जीवन तुम्हारे लिए एक उदाहरण बने, इसलिए कि सब बातों में तुम मुझे याद करते हो और शिक्षाओं का पालन ठीक उसी तरह करते हो जैसा मैंने तुम्हें सौंपा था, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये समझ लो कि प्रत्येक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढांक कर प्रार्थना करता या नबुवत करता है, वह अपने सिर की बेइज्जती करता है। जो स्त्री बिना सिर ढांके हुए प्रार्थना या नबुवत करती है, वह अपने सिर की बेइज्जती करती है, क्योंकि वह ऐसी स्त्री की तरह है जिसने सिर मुंडवा लिया है। यदि स्त्री अपना सिर न ढांके तो वह अपने बाल भी कटवा ले, लेकिन यदि स्त्री के लिए बाल कटवाना शर्म की बात हो तो वह अपना सिर ढांके। पुरुष के लिए अपना सिर ढांकना उचित नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर की समानता में बनाया गया था और परमेश्वर की महिमा है, लेकिन स्त्री पुरुष की महिमा है। क्योंकि पुरुष का निर्माण स्त्री से नहीं हुआ, लेकिन स्त्री को पुरुष से बनाया गया था। न ही स्त्री के लिए पुरुष को बनाया गया, लेकिन पुरुष के लिए स्त्री को बनाया गया था। इसी कारणवश एक महिला के सिर पर अधिकार का चिन्ह होना चाहिए। किसी भी हालत में प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष के और न पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब कुछ परमेश्वर से है। तुम ही सोचो, क्या स्त्री को बिना सिर ढांके परमेश्वर से प्रार्थना करना सोहता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम्हें नहीं पता कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए शर्म की बात है, लेकिन यदि स्त्री लंबे बाल रखती है तो यह उसे शोभा देते हैं, क्योंकि उसको बाल ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। लेकिन यदि कोई तर्क करना चाहे तो ये जाने कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। लेकिन यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हारी बड़ाई नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से लाभ नहीं लेकिन नुकसान होता है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम चर्च में इकट्ठा होते हो तो तुम में फूट होती है। मैं इस बात को थोड़ा थोड़ा सच भी मानता हूं। तुम में गुटबाजी जरूर होगी, ताकि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। इसलिए तुम जो इकट्ठा होते हो तो यह इसलिए नहीं कि प्रभु भोज में हिस्सा लेने में तुम्हारी दिलचस्पी है, इसलिए कि खाने का समय आने से पहले ही बिना दूसरों के साथ अपना खाना बांटे कुछ लोग खा लेते हैं। इसलिए कुछ लोग भूखे रह जाते हैं और कुछ मतवाले हो जाते हैं। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे पास घर नहीं है? या तुम लोग परमेश्वर के चर्च को तुच्छ जानते और गरीबों को शर्मिंदा करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या मैं तुम्हारी बड़ाई करूं? नहीं, इस बात के लिए मैं तुम्हारी बड़ाई नहीं करूंगा। जो मुझे प्रभु से मिला वही मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है। वो ये है कि जिस रात यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद देने के बाद तोड़ते हुए कहा,
ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मुझे याद करने के लिए ऐसा करते रहना।
इसी तरह खाना खाने के बाद यीशु ने यह कहते हुए कटोरा भी लिया,
ये मेरे खून में नई वाचा का कटोरा है, जब कभी तुम इसमें से पियो तब तब मेरी याद के लिए ये करना।
जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस प्याले में से पीते हो, प्रभु के फिर से आने तक उनकी मौत का ऐलान करते हो। इस कारणवश जो कोई अयोग्य तरीके से रोटी खाए और प्रभु के प्याले में से पिए, वह यीशु की देह और खून के खिलाफ गुनाह करता है। एक व्यक्ति को अपना परीक्षण करना चाहिए और फिर रोटी में से खाना और प्याले में से पीना चाहिए, इसलिए कि जो देह को बिना आदर दिए खाता और प्याले में से पीता है, वह अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण से तुम में से बहुत से कमजोर और बीमार हैं और कुछ एक मर भी गए। यदि हमने खुद की जांच की होती तो हम पर अनुशासनात्मक कार्रवाई न होती, लेकिन जब प्रभु हमें दंड देते हैं तो यह अनुशासनात्मक कार्रवाई इसलिए होती है ताकि इस दुनिया के साथ हम दोषी न ठहराए जाएं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जब तुम लोग खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे का इंतजार किया करो। यदि किसी को भूख लगती हो तो वह घर पर ही खा लिया करे, ताकि जब तुम इकट्ठे होते हो तब सजा की नौबत ना आए। दूसरी बातों के बारे में सलाह मशवरा मैं आने के बाद ही दूंगा।